रख लिया। वो कहते हैं यदि हिंदू धर्म अच्छा नहीं लगता है तो तुम बौद्ध बन जा, ईसाई बन जा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, धर्म कर्म तो कुछ है नहीं। वो इन चीजों को नहीं समझते हैं, उसको सभी को कहते हैं जैसे खाओ पियो गाय भैंस जैसा, सुअर जैसा तुम रमो, और दूसरा कोई काम आत्मा की अनुभूति तो है नहीं, भगवत अनुभूति नहीं है, आंखें तो अंधे हैं, कैसे इन चीजों को समझेंगे। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर के साथ में जगन्नाथ बाबा जी आकर के वहां पर खूब जोर से नृत्य करने लगे। उसमें ऐसा मालूम होता था कि ये 15-12-20 वर्ष के ये नवयुवक है। उस समय बंगाल में एक तब चैतन्य महाप्रभु जी की भूमि निर्दिष्ट हुई, ये गंगा के पूर्व किनारे पर, ये कृष्ण महाप्रभु की जन्मभूमि है। अब वहां पर तो विशाल विशाल संबंध बन रहे हैं। उन्होंने एक और काम किया, पहले लोग हरिनाम को धीरे धीरे मन ही मन करते थे। उन्होंने कहा कि हरिनाम को जितने जोर से उच्चारण किया जाएगा तुम्हारा चित्त एकदम समाविष्ट होगा, धीरे धीरे करेगा तो तुमको नींद आएगी मन ही मन में, इसलिए जितना उच्चारण करेगा, जैसे पशु पक्षी कीट पतंग घास पेड़ पौधे हैं, ये सभी जीव हैं, उनके कानों में भी जाएगा ये नाम तो उनका भी कल्याण होगा तुम्हारा भी कल्याण होगा, इसलिए उच्च स्तर से नाम करो। उन्होंने एक जगह लिखा, इस संसार में माया के संसार में यदि कोई व्यक्ति कोई संत एक जीव को जो भगवान सा विमुख है उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की भक्ति के तरफ में लगा दिया जाए, वो कृष्ण सेवा की उसकी वासना हृदय में जम जाए, इससे बढ़कर के कोई उपकार नहीं है। कोटि कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा, कोटि कोटि स्कूल कॉलेज करने की अपेक्षा, कोटि कोटि रुपयों का दान करने की अपेक्षा, एक कृष्ण नाम अधिक श्रेष्ठ है। उसकी चित्त वृत्ति को भगवान की तरफ में मोड़ दो, अपने आप जगत की सारी समस्याएं उसके लिए सुलझ जाएगी। और इसके बिना तुम लाख चेष्टा करो, तरह तरह की समस्याएं आएंगी, तुम जीवन में दुखी रहेगा। इसलिए एक जीव को भी यदि भगवान के तरफ में मोड़ दो उसका कल्याण हो जाएगा, तब उसमें व्यभिचार नहीं रहेगा, पाप नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जीव हिंसा नहीं करेगा, यहां तक कि चाय अफीम गांजा भांग जो जो भक्ति के विरोधी हैं, हमारे जीवन का विरोधी है, अपने आप छूट जाएगा, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। आदमी बिगड़ता है क्यों, इन्हीं चीजों के लिए। एक आदमी भला आदमी है, दारू पीने लगा, उसका सर्वनाश उसके परिवार का हो जाता है, गंदी गंदी बातें उसके हृदय में आती हैं। कुछ तो ऐसे हैं आजकल, क्या वो विदेशों से अमेरिका और कहां कहां जाते हैं, हिप्पी बनते हैं, क्या खाते हैं, एक ना हीरोइन। एक लड़का था अभी कलकत्ते में, हीरोइन किसी प्रकार से खाता था, जब पैसा नहीं मिलता तो अपनी मैया का जितना आभूषण सब चोरी करके के बुलाता, यहां तक कि चोरी डकैती सब कुछ वो करने लगा, उसके बिना रह नहीं सकता। तो ये सब का ये जितने भी उपद्रव अशांति का कारण है, ये सब चीजें हैं। अपने आप भक्ति के द्वारा उसका चित्त यदि मुड़ जाता है, जन्म जन्मांतर का क्लेश दूर हो जाता है इस भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रारंभिक स्तर से लेकर और गोपी भाव के अंतिम स्तर तक उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा, एक साधारण व्यक्ति से। अभी देखा जय धर्म यहां पर कहीं रखा था, उसमें एकदम निम्न स्तर से लेकर और अंतिम स्तर तक गोपियों तक उनके भावों को पाया जा सकता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। कैसे साधन किया जाता है, कैसे साधन हमारा होना चाहिए, साधन किसको कहते हैं, भगवान किसको कहते हैं, ये सब का उन्होंने परिभाषा देकर के बड़े सुंदर ढंग से लिखा है। हम लोगों को उसको अध्ययन करना चाहिए यदि भक्ति हम चाहते हैं, उनके आदर्शों को हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। उनके चरित्र में बहुत बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत सी विशेषताएं हैं। वृंदावन में आए थे, उन्होंने उस समय में राधा कुंड में जाने के लिए रास्ता नहीं था, गोवर्धन में जाने के लिए रास्ता नहीं, सब वो क्या होते हैं ना कंजड़, कंजड़ जानते हैं आप लोग,
कंजर,
वो गाड़ी छकड़े रखते हैं, स्त्रियां उनके पास में होते हैं, दिन में तो वो चीजों को बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और चोरी के लिए देख करके, और रात में डकैती डालते हैं, बंजारे, उनका काम यही सब करना, बड़े उपद्री और ये होते हैं, नोटोरियस होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी दबा नहीं सकती। तो इस तरह से वहां उनके डर के मारे कोई अच्छा आदमी नहीं जाता था राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन। जब ये आए थे जगन्नाथ दास जी ने कहा, अरे आप तो गवर्नमेंट के आदमी हैं, कुछ यहाँ पर व्यवस्था तो करो, जो लोग अच्छे अच्छे साधक लोग गोवर्धन में रह सकें, गोवर्धन में पूजा कर सकें, परिक्रमा कर सकें। तब वहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिल करके और उनको कह सुन करके ऐसी सारी व्यवस्था कराई, धीरे 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 सब लोग वहाँ पर जाने लगे और वहाँ पर परिक्रमा होने लगी और तब से इसकी बढ़ती होने लगी। आज इस भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव तिथि है, आज वो हम पर कृपा करें सब लोगों पर, जिससे कि हम लोगों को शुद्धा भक्ति हो। ये समझे कि हम जन्मांतर से कृष्ण के दास दासी हैं। अभी जो स्त्री पुरुष हम लोग देख रहे हैं ये हमारा स्वरूप नहीं है, हो सकता है इसके पहले कितने बार पुरुष बने हों स्त्रियां, और पुरुष लोग बने हों स्त्री बने हों, कोई गाय बैल घोड़ा सुअर गधे मछली, कभी देवता कभी गंधर्व कभी कुछ बने हों, अनंत काल से हम लोग घूम रहे हैं इसमें। यदि इस जीवन में यदि हम लोगों ने भगवान को नहीं पाया तो ये जीवन वृथा चला जाएगा, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। भगवान ने कुछ बुद्धि दी है इसलिए बुद्धि से विवेचन करना चाहिए, सब जगहों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है किंतु गीता भागवत में गड़बड़ी नहीं होगी, वेदों में गड़बड़ी नहीं होती, इसलिए उसके अनुसार में जीवन चलाने की चेष्टा करनी चाहिए। गीता में लिखा, मत्तः परतरम किंचित न अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर के कोई भी तत्व नहीं है। इस गीता की सरल सी बात को हम लोग समझ नहीं पाते। देवता देवता इत्यादि जो हैं ये धन संपत्ति कुछ दे देंगे किंतु विचार नहीं करेंगे इसे इसका काश सर्वनाश होगा या क्या होगा, ये नहीं बतला सकते। किंतु कृष्ण में ऐसी बात नहीं, इन चीजों को नहीं देते, इन चीजों की वासनाओं को दूर कर देते हैं। इसलिए गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कल्याण चाहते हो, कृष्ण कह रहे हैं ये सोने के थाल में अमृत परोस रहे हैं कृष्ण, किंतु लोग ग्रहण नहीं करते। गीता पढ़ते हैं खूब किंतु उसके उपदेशों को नहीं मानते हैं। हम लोग गीता पढ़ें उपदेशों को भी मान करके चलेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों का परित्याग कर हमारे शरण में आ जाओ। यदि इसे कुछ पाप भी लगता है, दोष भी लगता है, तो इन सब दोषों को पापों को मैं दूरभूत कर दूंगा। आश्वासन देते हैं कितना, माम एव जे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते, जो लोग हमारा आश्रय ग्रहण करते हैं माया ये दूर हो जाती है। माया किसको कहते हैं, मा या, मा माने नहीं, जा माने जो, जो नहीं है उसको हमने वही समझ रखा है। पहले जन्म में हमारा कोई शत्रु था किंतु इस जन्म में हमारा बाप हो गया, और जो मित्र था वो बन गया शत्रु कर्मों के फेर से। कोई लड़का पहले जन्म था वो स्त्री बन करके हमारी आ गई, अब ये संबंध नित्य नहीं है, इस चीज को समझना चाहिए। कर्मों के फेर से ये चीजें मिली हुई हैं, न हम पुरुष हैं न स्त्री हैं, हम कृष्ण के दास दासी हैं, इस चीज को समझना चाहिए। स्वरूप हमारा यही है, इसीलिए इस जगत में आए हैं, इसकी उपलब्धि हो जाए। यदि नहीं कर पाते जीवन वृथा चला जाएगा, इसलिए ये सब चीजों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसा लिखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी एक दिन अपने आश्रम में बैठे हुए थे, देवता लोग उनके सामने पधारे, आज वहां पर देव सभा हो रही थी,
और वहां पर एक विषय का विचार हो रहा था, किंतु विचार में निर्णय नहीं हो सका कि ये क्या ठीक है क्या गलत है। आपको कृपा करके पधारना होगा। ये थे कौन? महाप्रभु के लीला के तो ये परिकर है ही हैं, कृष्ण लीला के ये कमल मंजरी हैं, उन्होंने अपना परिचय दिया है, झूठ नहीं बोल सकते। जो इतने ग्रंथ को लिखने वाले और संसार के जगत गुरु, वो लिख रहे हैं कि हमारा नाम क्या है? कमल मंजर। सेवा क्या है? तांबूल या कर्पूर सेवा कृष्ण की। वस्त्र कैसे हैं? शरीर कैसा है? ये सब चीजों का विवरण पूरा दिया जब मैं क्या हूं। इसलिए कृष्ण लीला की मंजरी हैं, सखी हैं, राधिका जी के एकांत सहेली हैं, इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ये लिखा गया, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने, सच्चिदानंद भक्ति विनोद, ये जिनका नाम है। गौर शक्ति स्वरूपाय, गौ चंद्र की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है, ये गदाधर के स्वरूप जैसे ये हैं, इनकी कृपा से कृष्ण भक्ति सहजी में हो सकती है, इसलिए मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं। देवता लोग उनको ले गए वहां, बोले जी भाई कल मीटिंग में ये बातें हो रही थी जो गीता में एक वाक्य है, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भात साधुरेव समन्तव्य सम्यक दवसितो हि सः। इसका सीधा साधा अर्थ यह है, अपिचेत्सु दुराचारो, चेत माने यदि, अपि माने भी, यदि अत्यंत दुराचारी भी हो, सुदुराचारी माने अत्यंत दुराचार, दुराचार किसको कहते हैं? अत्यंत व्यभिचारी, जो दूसरों की पत्नियों को, स्त्रियों को, बेटी माता और कन्या नहीं जानता और उनके प्रति बुरी भावना रखता है, पशु के समान होता है, डकैती डालने वाला, अपनी मातृ हत्या करने वाला, गो हत्या करने वाला, ये सब दुराचार है, सुदुराचार। घर में किसको आग लगा दिया, हरे भरे पेड़ों को काटने लगा, जिससे लोगों की भलाई होती है, ऐसे कामों को उजाड़ करने लग जाए, यह दैत्य दानवों का काम है। उन्होंने अपिचेत सुदूरा, इधर में आ जाइए, अत्यंत सुदुराचारी व्यक्ति भी, घर में आ जाइए, कीर्तन में, दुराचारी व्यक्ति हो, भजते माम अनन्य भात, यदि हमारा अनन्य भजन करता है, यदि दुराचारी व्यक्ति कभी भी अनन्य रूप से भगवान का भजन ही नहीं करता तो अनन्य की बात कर, अनन्य किसको कहते हैं? मुझे माने कृष्ण कह रहे हैं, मेरा अनन्य भजन करता है, अनन्य भजन माने क्या? कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का नहीं, सब हमारे लिए प्रणम्य है, मैं सबको प्रणाम करता हूं, किंतु भजन करूंगा किसका? केवल राधा कृष्ण का ही भजन करूंगा, और किसी का नहीं। और का अनादर करते हो? अनादर कहां हुआ? भजन नहीं करना अनादर नहीं है, मैं उसकी निंदा करूं, उसको गाली दूं, उसके विरुद्ध यदि कहूं तो ये अनादर हुआ। मैं कृष्ण का अनन्य, उनको कृष्ण का, किसी को जो अवतार है उनको अवतार समझता हूं, इसलिए किसी को देवता लोगों को सम्मान देता हूं कि ये भगवान के ये कार्य करता है, उनमें भगवान की शक्ति काम कर रही है, इसलिए कुछ कुछ तक वो देते हैं, इसलिए जीव मात्र को एक चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मैं प्रणाम करता हूं। बस वैष्णव लोग ऐसे होते हैं, किंतु यदि सुदुराचारी, अत्यंत दुराचारी हों, तो भी भजते में आम अनन्य भाव, यदि मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, हमारे अतिरिक्त और किसी का नहीं, और हमारे प्रसन्नता के अतिरिक्त अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, तब अनन्यता होगी। अनन्यता में दो बात है, खूब जरा अच्छी तरह से समझो, एक कृष्ण के अतिरिक्त और दूसरे का नहीं, दूसरी बात क्या? कृष्ण की प्रीति के लिए ही, अपनी प्रीति के लिए, दूसरों की प्रीति के लिए नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो, बस एक गोपियां इसकी चरम उदाहरण है, इससे बढ़कर के कोई उदाहरण नहीं। ब्रजवासी लोग इसके उदाहरण हैं। इसलिए ऐसा अनन्य हो, किंतु ऐसा अनन्य भजन करने वाला यदि अपि चेत् सुदुराचारो अत्यंत दुराचारी है तो अपि चेत् सुदुराचार भजते मानन्य बात साधु रेव सम्मंतव, उसको साधु ही समझो। कौन कह रहा है?
कृष्ण स्वयं कह रहे हैं।
किसको कह रहे हैं? उसको साधु मानो। यदि नहीं मानता तो क्या होगा? तुम्हारा बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। साधु रे मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो, उसने सम्यक व्यवसाय को आरंभ किया है। व्यवसाय माने क्या? यहाँ पर भक्ति व्यवसाय है। कोई कर्म का बिजनेस कर रहे हैं, कोई मशीनों का बिजनेस, कोई कुछ का, कोई कुछ का। यहाँ पर बिजनेस हुआ क्या, व्यवसाय क्या? ये कृष्ण भक्ति का व्यवसाय जो विशेष रूप से व्यवसाय, उसमें अवस्थित होकर के ये कर रहे हैं, उसको साधु समझो। क्यों? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्छन्ति निगच्छति कौन्ते जानाहि न मे भक्ता प्रणश्यति। अब वहां पर कहते हैं प्रतिज्ञा नहीं, अर्जुन कहते तुम प्रतिज्ञा करो जो हमारे भक्तों का विनाश नहीं होता। क्यों? आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा करते जो हमारे भक्तों का विनाश नहीं हो, मैं उनकी रक्षा करूं? नहीं, मेरी बात कभी टल जाती है, भीष्म ने आकर के हमारी बात को बदल दिया, बीच बीच में हमारी बातें रह जाती हैं, भक्त लोगों की बातें माननी पड़ती हैं, इसलिए हमारे भक्त यदि कह देंगे तो मैं उस बात को से तल से मल नहीं हो सकता, इसलिए यह बात परम रूप में सत्य है। देवता लोग कह रहे हैं कि भगवान का भजन करने वाला दुराचारी ही होता है। दुराचारी लोग भी भगवान का भजन करते हैं और उनको भक्त माना जाए कि नहीं, यही हम लोगों में संदेह है। तरह तरह से युक्ति तर्क के द्वारा हम लोग इसकी मीमांसा नहीं कर सके, ये दुराचारी कैसे भक्त होगा? इसी जगह में कह रहे हैं, एक दुराचारी व्यक्ति अजामिल था, मां दुराचारी क्या करता था? था तो ब्राह्मण का बालक, समस्त शास्त्र उसने पढ़े, एक बड़ी सुंदर स्त्री से, ब्राह्मणी से, विदुषी महिला से, विद्वान महिला से उसकी शादी हुई। माता पिता की सेवा करता, यज्ञ में उनके यज्ञ के लिए लकड़ी लाता, उनके समस्त आदेशों को पालन करता, उनका पैर दबाता, सब आदेश को पालन करता। एक दिन पिताजी की यज्ञ करने के लिए कुछ लकड़ी की सूखी जरूरत पड़ी, वो जंगल में पासी के जंगल में गया और लकड़ी ला रहा था, चुन रहा था, इतने में उसने देखा एक कोई नीच जाति का व्यक्ति, एक कोई स्त्री थी कुंशली, कुंशली बने क्या, बेस्या जैसी, वो उसके साथ में दारू पी रहा और गंदी हरकतें उसके साथ में कर रहा। देखते ही उसका मन उसके आप से निकल गया, वहां से चला आया, किंतु उस दृश्य को अपने हृदय में लेता आया, बहुत भूलने की चेष्टा की। मैं ब्राह्मण का बालक, शास्त्रों का अध्ययन किया है, यह बहुत गंदी बात है, किंतु हृदय से नहीं निकाल सका। जितना ही इसको निकालने की चेष्टा करता उतनी बात उसके अंदर में जमती चली जाती। घर जब आया, रहा नहीं गया, घर के चीजों को चोरी लेकर करके और फिर वो उसी बेस्या के पास पहुंचा, उसके साथ में दारू पिया, उसके साथ में रहने लगा, सारी चीजें घर की बिक्री कर दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया, बिदलाता अपनी स्त्री को छोड़ दिया, पिता माता की सेवा छोड़ दी और उसी के पास में पहुंच गया। उसके साथ में 8 लड़के पैदा हुए। अब वहीं से कहां से आए खाने पीने के लिए, दारू कहां से आए? अब वो चोरी चमारी लूट मार डकैती हत्या सब करने लगा। जब 80 वर्ष का हुआ तो छोटे बच्चे का नाम, जिसका नारायण था, उसकी मृत्यु आई काल, उसी समय छोटे बच्चे का नाम संस्कार वर्षा जो नारायण रख दिया था, अब वही नारायण का नाम याद आया, नारायण नारायण माने जल्दी से आओ, बहुत भयंकर आकृति उसको दिख पड़ी। नारायण नाम कहते हुए ही देखा 3 आए बड़े जमदूत, तन मन और वचन से करने वाले पापों के लिए प्रतीक के रूप में वो 3 आए जमदूत। और उसी समय जो नारायण नाम उच्चारण किया, नारायण ये चतुर्भुज बने हुए चार विष्णु के दूत वहां पर उपस्थित हुए। डरो मत, मां भयम मां भयम, मत डरो। मैंने देखा जी वो उसके प्राण निकाल रहे हैं और ये उसको ऐसे रोक रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने पूछा, तुम कौन है, क्यों आया? उन्होंने कहा, हम यम के दूत हैं, आए हुए हैं, इसके प्राणों को ले जा रहे हैं। ऐसा जघन्य पापी जगत में कोई नहीं, इसको जम दंड वहां पर मिलेगा, हम दंड महाराज जम महाराज के पास ले जाएंगे। आप लोग कौन हैं? तो हम लोग विष्णु के दूत हैं। किस लिए आए तुम? ये इस हरकत से बाजाओ, तुम ले यहां से चले जाओ। धर्म के ठेकेदार नहीं जानता कि धर्म किसको कहते हैं, तो इसने क्या धर्म किया? तो एक जो विष्णु का नाम नारायण का जो नाम उच्चारण किया है, इसका पूर्व पूर्व कोटि कोटि जन्म के पाप इसके दूर हो गए हैं। अब इसको कोई पाप नहीं है, जितना जगत में पाप हो सकता है सब पापों को करने में एक भगवान के नाम से उसका सबका प्रायश्चित हो जाता है। अब ये साधु है, अब इसके अंदर में कोई पाप की वासना नहीं है। तो अभी तो नारायण तो बहुत दिनों पहले रखा था, किंतु अभी तक तो जो पाप कर रहा था उसका पाप ऐसे है जैसे कोई साइकिल या मोटर चलाया, कार, और कार के बंद कर देने पर भी वो बहुत दूर तक चली जाती है। एक रेल एक माइल चली जाएगी जो फोर्स से आ रही है, फोर्स को बंद करने पर भी। ये अभ्यास है, इसे अब जो उसका विषैला दांत था कर्म का वो तो टूट गया, ऊपर से दिख रहा है जी ऐसा कर्म कर रहा है, किंतु अब यथार्थ में वैसा इसका फल नहीं होगा। भगवान का नाम का करने से इसकी जितनी प्रवृत्तियां थी वो सब कुछ ध्वंस हो गई। अब इसको साधु मानो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये तो साधु ही है। इसलिए भगवान का जो भक्त अनन्य भजन करने वाला है उसमें जो ऊपर से दुराचार यदि देख भी रहे हैं किंतु उसको साधु मानो, बाई चांस पैर फिसल गया, कुछ ऐसा हो गया, उसकी निंदा मत करो, उसका संग मत करो, किंतु उसकी निंदा मत करो, उसे दूर रहो। कुछ दिनों के बाद में जब सचमुच में साधु वृत्ति का जब देखेगा उसका संग करो, उसकी सेवा करो। इसलिए उन्होंने कहा ये दुराचार व्यक्ति भी हो यदि भगवान का भजन करता है वो श्रेष्ठ है, और एक महा सदाचारी व्यक्ति है परम धर्मात्मा जैसा लगता है, बहुत स्कूल कॉलेज कर दिया, जिस मुर्दे को कोई जलाता नहीं उसके लिए हजारों रुपए खर्च करके उसको जलवा करके उसका सत्कार इत्यादि करता है, जिस लड़की की शादी नहीं गरीब हो उनकी शादी भी करा देता है, जिस बच्चे को शिक्षा नहीं होती उसको शिक्षा को भी दिला देता है। ये तो अच्छा आदमी व्यक्ति है ना, सत है, किंतु यदि भक्ति नहीं रहते इसके समान जघन्य कोई पापी नहीं। ए गुण के वजह से यदि भगवत भक्ति है, सर्वई गुणे तत्र समासते सुआ, एक यदि भगवत भक्ति है उसमें दुर्गुण भी वो गुण हो जाएगा, और जिसमें भक्ति नहीं और सारे गुण हैं वो सारे गुण क्या हो जाएंगे, वो सब दुराचार हो जाएंगे, उस गुण का कोई भी मल नहीं। जरासंध बहुत धर्मात्मा था, ब्राह्मण का आदर करता था, किंतु पांडवों का द्रोह करता था इसलिए उसकी दुर्दशा हुई। कर्ण कैसा था, दानी, अपना कवच कुंडल जो उसके साथ में जन्मा था उसको दे दिया जो देना असंभव था। इंद्र गए, देखा जैसे कर्ण तो इसे मारेगा अर्जुन को, इसलिए इसका जो कवल और कवच और कुंडल है ले लिया जाए। जाकर के उनसे दान मांगा, उन्होंने दे दिया, काट करके निकाल लिए, हार में गुथा हुआ था उनका कवच, उसको निकाला और उनको दे दिया। जब जाने लगे तो उनका रथ वहीं पर रुक गया, चले नहीं, जी मैंने पाप किया जी मां इंद्र। उन्होंने कहा जी महाराज कर्ण आप हमसे कुछ दान ले लीजिए, मैं ऐसे छोड़ करके ऐसे नहीं करता, हाथ नहीं पसारता कभी, मैं कभी भी दान तुमसे नहीं लूंगा। कहिए तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा, मैं इंद्रलोक पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, क्या आप हमसे कुछ दान मांगे? ठीक है, तो एक बात करो अपना वज्र हमको दे दो। अजय जी ये वज्र लेगा तो उसी दिन मारेगा, एक बार चलाएगा और दिन मर जाएगा। अजय ये तो बड़ा भारी मुश्किल हुआ। तो उन्होंने कहा एक बार तू चलाएगा फिर दूसरी बार हमारे पास में चलाएगा, जाओ तुमको दे देते हैं। दे तो दिया, और इधर मैं कृष्ण को जाकर के सावधान उसको मैंने वज्र दे दिया, किसी प्रकार से वज्र उसको एक बार चलवा दीजिए, हमारे पास चला आया। इसलिए हिडम्ब राक्षस जो भीम का पुत्र था उसको रात में आक्रमण करवा करके इतना घोर युद्ध किया, ये दुर्योधन का अब मरा जल्दी से हमारी रक्षा करो। इसके बाद उन्होंने कहा अरे मैं कल जीवित नहीं रहूंगा, आज ही मर जाऊंगा तो तुम्हारी ये शक्ति का क्या होगा, वज्र का आज मेरी किस प्रकार। बस उन्होंने कहा यह तुम्हारी ये दुर्भाग्य है, बस उन्होंने मारा वज्र से और वो वज्र उसको तो मारा और चला गया। कृष्ण के सेनाओं में बड़ा आनंद फैल गया, कृष्ण को पांडवों को जो बच गया ये। तो कितना दानी था, यहां तक दानी था कि वो क्षेत्र मंडल में जब मारा गया युद्ध में जिस समय, तो उस समय कुछ प्राण थे अपनी गदा से ऐसे घुमा करके अपनी रक्षा कर रहा था। इतने में कोई ब्राह्मण पहुंचा, भाई कर्ण कहाँ है, कर्ण कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैं मर रहा हूं, यहां पर हमको खोजने के लिए क्यों आया, हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही है, धन नहीं है, हमको कुछ धन दे दो। मैं यहां कहां धन लेकर के आया, अब तो मैं मर रहा हूं, धन कहां से दूं। महाराज आपके पास में मरते हुए भी आपके पास बहुत कुछ है, तो क्या है भाई हमको तो याद नहीं। अरे आपके जो दांत हैं ये सोने से और मणियों से बना हुआ है, दोनों दांत आपके दो दांत टूट गए थे, वो दांत वो मणियों के साथ में ये हीरा जवाहरात तो उसमें जड़े हैं सोने, ये देने से ही हमारी 10-20 लड़कियों की शादी हो जाएगी। बस उन्होंने गदा उठाया और ऐसे मारा, वो दांत टूट गया और उसको दे दिया। ऐसा दानी था, किंतु दुर्गति क्यों हुई, एक गुण नहीं था भगवत भक्ति का, अनन्य भक्ति का नहीं था, पांडवों का ये विपक्ष का। इसलिए एक यदि गुण रहे, कोई गुण ना रहे तो समस्त गुण ही उसके हो जाएंगे। यशस्य भक्तिर भगवत किंचना सर्वै गुणैः तत्र समासते सुगा हरा व भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन धावतो असत बही। जिसको भक्ति नहीं है दिन भर चंचल रहेगा उसका चित्त, उसको सुख शांति नहीं मिल सकती, उसके सब गुण दुर्गुण हो जाएंगे। और दूसरी तरफ में अजामिल को देखो, वाल्मीकि को देखो, नाम अलेत भव सिंधु सुखाही, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय। देखो तो कितना दुराचारी व्यक्ति, डकैत। इसलिए हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये दिया, अनन्य भजन करने वाले में यदि कोई दोष भी तुमको देखता है उसको साधु ही मानो, किंतु जो अभ्यास कर रहा है ऐसा है? वो जिसको कहते हैं भीतर से तो कुछ भक्ति का भाव नहीं, ऊपर से भक्ति का भाव दिखला रहा है, ऐसे लोगों को लिए नहीं। अनन्य रूप में भगवान का भजन करने वाला हो तब तो हुआ। इसलिए इन सबको विचार करके कृष्ण भक्ति को हृदय में स्थान देने, अनन्य रूप में अकेले कृष्ण का, न अन्य वासना। गीता यदि सत्य है, भागवत यदि सत्य है, वेद सत्य है, तो कृष्ण परम पुरुष है, वो स्वयं भगवान। ब्रज की भक्ति सर्वोत्तम है, इसको समझिए, और ब्रज की भक्तियों में गोपियों की भक्ति सर्वोत्तम है, इसे बढ़कर के और कोई भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए गोपियों के भावों के अनुसार में हम कृष्ण की सेवा की एक वासना बनाए, यही भक्ति विनोद ठाकुर की अंतिम शिक्षा है। आज यहीं पर हम वक्तव्य समाप्त करते हैं, आइए थोड़ा सा कीर्तन कर जाइए, अब तो ये लोगों ने कीर्तन किया है, आ जाइए।
भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में
महामंत्र की ध्वनि खूब जोर से लगा दी।
भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में ये कुछ ऐसी पुस्तकें उन्होंने लिखी है जिसको तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल काम है,
बहुत सहज
नहीं। जैसे कोई वो बता रहे थे एक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने सारे के सारा हमारा पुराना इतिहास रामचंद्र से लेके वो 5,000 वर्ष के अंदर ही अंदर उन्होंने जिक्र किया है। किताब का नाम हरिप्रिया बता रहा था,
वो समझ जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जैव धर्म अंत में लिखा और इसको समस्त वैष्णवों ने सैटिस्फाई किया, और उन्होंने लिखा कि हमने जब जो कुछ लिखा उसके अंत में सबका साथ देकर के इसमें दे रहे, इसलिए इस ग्रंथ को सब पढ़ो और वैसा ही आता हमको इधर उधर जाने की, जिसमें संदेह है उसमें हम क्यों जाए। क्या हो गया,
उसका समाधान है क्या ऐसा
उन्होंने जाने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे हरि नाम करो, भगवान का भजन करो, और जब भी उसमें पढ़ने की इच्छा तो देख लो ऐसा कोई सदगुरु हो उनसे उन चीजों को पढ़ो। प्यारे प्रियतम हरि हमारे चित्त को हरण करके कहाँ गए? आपने हमारे चित्त को आकर्षण कर लिया। ऐसे जो कृष्ण जो हमारे चित्त को आकर्षण करने वाले वेणु वादन करने वाले अपने रूप से माधुर्य से हमारे चित्त को आकर्षण करने वाले ये कृष्ण आप कहाँ हैं? हे राम आप कहाँ हैं? हमारे साथ में गोपियों के साथ में रमण करने वाले गोपी रमण राधा रमण आप कहाँ हैं? अब मुझे याद आ रही है आपकी, अब मैं रह नहीं सकता। या तो हमारे प्राणों को लौटा लेने के लिए आप प्रकट हो जाइए, नहीं तो अभी प्राण हमारे विकल होकर के निकल। इसके बदले में कृष्ण क्या कर रहे हैं बोलो।
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा बदले में कृष्ण कह रहे हैं रात से राधा रानी अंतर ध्यान हो गई। कृष्ण ने देखा जी श्रीमती राधिका कहाँ? इधर खोज रहे इधर खोज रहे कहीं नहीं मिले। बड़ी व्याकुल होकर के राम कृष्ण राधा जी को पुकारने लगते। क्या कहते हैं? अरे हमारे चित्त को हरण करने वाली अपने रूप से गुणों से अपने नृत्य से संगीत से अपने भावों से हमारे चित्त को तुमने हरण कर दिया, अब तुम कहाँ हो? ये तो हुआ हरे कृष्ण कृष्ण वहां पर कृष्णा हो गया आकार दे दो हरे कृष्णा पड़ोस इधर के लोग कृष्णा ही क्यों कृष्णा माने कौन? हे कृष्ण माने राधिके कृष्ण है कृष्ण और कृष्णा है राधिका जी। हे कृष्ण तुम कहाँ हो? हे रामा हमारे साथ में रमण करने वाली रमन कराने वाली श्रीमती राधिके आप रामा हैं आप कहाँ? इस प्रकार से व्याकुल चित्त होकर के इस प्रकार से वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा रामा रामा। अब इसके बाद में जितनी गोपियां थी वहां पर उस राष्ट्र मंडल में राधा जी कृष्ण सभी मिलकर के एक स्वर से फिर ये कीर्तन करने लगे। क्या करने लगे?
Thank you.
कर रहे थे, जितनी गोपियां थी राधा और कृष्ण दोनों की ऐसी भावना देख करके कह रही हैं, अब ये सभी लोग राधा कृष्ण दोनों को मिला करके अब इसमें ले रहे हैं। हे हरे, हरे माने हरा से हरे, हे राधिके, और कृष्ण से यहाँ पर कृष्ण जो राधा जी के चित्त को चुराने वाले जो हैं, आकर्षण करने वाले, हे हरे हे राम, हरे कृष्ण के साथ में ये जोड़ी लग गई, हरे कृष्ण राधा कृष्ण ये सभी मिलकर के करने लगे, कृष्ण और राधा जी उसमें तन्मय होकर के उसमें मिलकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। यहाँ पर हरे राम माने कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली राधिका के साथ में राधा रमण यहाँ पर युक्त होकर के यहाँ पर राम बन गए, बस जोड़ी जुगल जोड़ी बनी, किशोर और किशोरी सभी मिलकर के तन्मय होकर के इस प्रकार से करने लगे,
हरे कृष्णा
सभी मिल करके उनकी आरती उतारने लगी, अब सभी लोग मिल करके उनकी आरती
उतारे,
कोई भी कष्ट नहीं, आनंद ही आनंद, केवल भगवान का नाम कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम एक बार कर दिया, ये भजन को इसमें क्या है, हारमोनियम लेकर के बैठ जाना, सितार लेकर के बैठ जाना, कोई चीज अपना जन्म नहीं हो, कोई बात नहीं, करता भी लेकर के उसे कितना सहज सरल तरीका, और विश्व में कहीं नहीं निकला, केवल मैं उनकी हूँ ये कह देने से वो बस ग्रहण कर, इससे बड़ी आशा क्या, मुसलमान लोग हैं 10 बार उठते हैं बैठते हैं, 10 बार नहीं कितने 25 बार 30 बार तो दम खुल जाएगा तुम्हारा, वो जरूरत नहीं है।
कल मैंने देखा 15-20 लोग रजिस्ट्रेशन से, उसको नमाज के लिए कितना दिक्कत हो रही थी,
हम लोगों में ये सब नहीं है, ये जो गोवर्धन परिक्रमा इत्यादि करते हैं, नवजोत है करते हैं, करें नहीं किए बिना भी भक्ति हो जाएगी, कुछ भी मत करो, चल भाव रखो मैं उनकी हूँ वो मेरे हैं, बस यही भाव, प्रणाम नहीं करते, सिर नहीं झुका सकते, मन ही प्रणाम, बहुत सरल, मरना एक दिन है ही है, दुख सुख भोगने हैं एक दिन, जैसा तुमने कर्म किया उसके अनुसार में इस शरीर में आएंगे, किंतु भगवान के नाम के द्वारा ये भी दूर हो जाएगा, तुमको दुख नहीं पाते, इसलिए बचपन से भगवान ने अच्छा किया, तुमको कुछ अनुभूति हुई, सीधे भगवान की तरफ, गंदी चीज मत खाना करो, प्याज लहसुन चाय इत्यादि भी है ये सब मत जाना, रिंक इत्यादि इसके तरह से मत जाना, सादे सीधे की सब्जियां है, रोटी है, घी है, दूध है, फ्रूट्स है, कितनी अच्छी चीज, जानवरों को मार करके उनका मांस, उनका अंडा माने क्या, वो तो बच्चा है, भगवान तुमको कर, तुम सुखी जरूर रहे, जैसे सोने का आभूषण होता है शरीर में, वो केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए नहीं है, सौंदर्य तो बढ़ता है, साथ साथ में उसमें एक और लाभ है, उस सोने में जो धातु का जो गुण है वो शरीर में प्रवेश होने से शरीर तेज रहता है, उसमें शक्ति होती है, इसलिए हमारे प्राचीन काल से लोग हैं, ये तुलसी का जो ये है, ये देखने में लकड़ी जैसा मालूम होता है, इसमें एक ऐसी आकर्षक शक्ति और प्रभावशाली शक्ति है, हम कल्पना नहीं कर सकते, मन में जितने विचार आते हैं ना, गंदे विचार उनको छांट देगी, उनको बाहर कर देगी, अच्छे विचार, ये सोना में भी किसी भी संसार के किसी द्रव्य में नहीं है किंतु इसमें तुलसी समस्त रोगों की औषधि और परमात्मा को देने वाली, ऐसी भावना बनाएगी कि भगवान के साथ संसारिक भोग की लालसा नहीं एकदम उसको पूरे विचार नहीं उतर आने दे, ब्लड प्रेशर इत्यादि को भी वो एकदम दूर रखती शारीरिक और परमात्मिक रूप में मन मन को भी शुद्ध रखती है और अंत में आत्मा को शुद्ध करके भगवान के शरण में इस रूप में समझो। जैसे संसार में हमारे एक परम बंधु हैं, हमारे माता पिता हैं, हमको ये गाइड कर रहे हैं, जैसे इन सब बेटियों को गाइड कर रहा हूँ, तुम भगवान के भजन में पढ़ो, ये सब तुमको बेटी से भी अधिक प्यार करेंगे अब भगवान की तरफ। यदि विवाह करने की ख्वाहिश होगी तो वैसा यदि कोई योग्य मिल जाए लड़का तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम भगवान को ही उन्हीं से शादी करके रहो, बस वही हमारे पति हैं, वही हमारे भाई हैं, वही पिता हैं, वही सर्व हैं। ऐसा करते करते भगवान में एक भाव आएगा, उसी भाव के साथ तुम मीराबाई जैसा, मीराबाई का सुना है, मीराबाई से कोटि गुण जो ये गोपियां हैं जिन्हें कृष्ण को एकदम समर्पण कर ऐसे बन। अभी तक तुम समझो कि हमको गोपी बनना है, कृष्ण की सबसे प्यारी होना है, अभी तक जो गोपियों के गुण है, मीराबाई के जो गुण है, वो सब गुण हमें हैं। जब तक वो संसार में थी पति उसको खूब धिक्कारता, मालिश मारता, गाली देता, अपमान करता, अकेले में भजन करती है तो कहता है ये तो कोई आदमी इसमें घुसा हुआ है, पुरुष है कोई, उससे प्रेम करती है, उसके क्षेत्र पर भी शक करता। एक दिन मीराबाई एकदम तन्मय होकर के कबाट बंद करके नृत्य कर रही है, उसने देखा जैसे ये भीतर में कोई है क्या, देखते हैं कि जैसे ये तो बंसी की आवाज भी या कुछ ऐसी और एकदम मीरा एकदम नृत्य कर रही है, उन्हें जरूर कोई घर में है। तो उसने कहा कबाड़ खोलो, 10-5 आदमी सिपाहियों को भी बुला लिया, कबाड़ खोलो, वो तन्मय थी नहीं सुनी, कबाड़ को तोड़ दिया, भीतर चला गया, खाट के नीचे देखा, पलंग के नीचे देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं मिला। तो उसे पूछा कि तुम्हारे साथ में कोई है, तो हाँ है, कौन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूर सर, कहाँ है वो, तो तुमको नहीं दिखा, इधर उसके सिर पर थोड़ा हाथ रख दिखने लगा, एकदम उसको जब हाथ रखा, अरे तो मारने की चेष्टा की, फिर से पूछा कहाँ वो आदमी है, मुझे देखो तो गुरु बन गए, इस तो गुरु इतना सहज नहीं है उन्होंने, इसके बाद उनके चरणों में गिर गया, जब चरणों में गिर गया तो कहते अब इस घर में हम बस कुछ नहीं लिया, जैसे थी वैसे ही निकल गए। उसका पति, उसका सबके घर के लोग उसके चरणों में गिर रहे हैं, वृंदावन तक आए उसकी, बस वृंदावन में आकर के भजन किया, फिर द्वारका चली गई और भगवान की मूर्ति में एकदम प्रवेश कर गई।
कुछ तो गोपी भाव में थी, राधा रानी को मानती थी,
वो अभी गोपी भाव में नहीं आई थी, रुक्मणी के पत्नी भाव में, पत्नी भाव वो भी उनका नहीं, तो वृंदावन में गोपियों के रूप में वो रहा भजन करती थी। इसलिए हम उनका आदर्श नहीं लेते, हाँ साधारण रूप में भक्ति थी और ये भी साधारण नहीं है, जो कृष्ण को पाना रुक्मिणी और सप्तभामा के रैंक में जाना ये साधारण चीज नहीं है। सीता जी हैं, राम की पत्नी हैं, सती हैं, उनको वो भी नहीं,
इनका भागवत
तो नहीं, इनका मीरा का, अरे मीरा अभी 500 वर्ष नहीं हुआ, 450 वर्ष, ये महाप्रभु जी के बाद में रूप सनातन हुए, उनके बाद में जीव गोस्वामी, ये जीव गोस्वामी के समय 1500 कितने में
किससे मिलने गई थी, उन्होंने मना कर दिया मुझसे, मतलब
जी गोस्वामी
जी गो,
उन्होंने कहा जैसे स्त्रियों में के, मैं ये असत्य है कि मैं स्त्री हूँ, मैं नहीं मिल रहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो ऐसा नहीं समझती, हम तो समझती हैं कि एक ही मात्र कृष्ण पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष ही नहीं है, बाकी सब गोपियां हैं इस प्रेम में। तो जी गोस्वामी ने उनको बुलाया, उन्होंने मंत्र के लिए प्रार्थना की, मन से तो दिया किंतु संग नहीं कर सकी, इसलिए उनके भाव उनमें नहीं आए। प्रारंभ से जो मंत्र दिया जाता है उसका भाव जो दिया जाता है वो आदमी ग्रहण कर लेता है। गोपाल मंत्र दिया ना, और किंतु ऐश्वर्य बुद्धि से और ये अधिक संग नहीं किया, इसे वो कुछ नहीं। हमको चलना है सीधे गोपियों के भाव और किसी के साथ नहीं। भले ही हम जो भी हों, मूर्ख हों, जैसे भी हों, पतित हों, अधम हों, किंतु हम मैं वही खाऊंगी तो वही, दूसरा कुछ नहीं खाऊंगी। मैं तब तक तो रूठ करके बैठी रहे,
क्या तक की तरह होंगे तो रोहिणी नक्षत्र का जल वर्णन
करने के लिए जो
आपने
भाव हमारा वही ठीक है। तुम भी आगे बढ़ो, इसलिए जब इतना त्याग किया तो और थोड़ा सा त्याग कर।
बादल स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र के बादल
सब पास प्यास से सफर कर रहा है। जेठ का महीना पार हो गया, पानी नहीं पिया। कहते यार प्यास लगी है तो सरोवर में पानी पी ले, गंगा में जमुना में पानी पिएगा, जब मैं नहीं पीता बस आकाश की तरफ में रखे। जब स्वाति नक्षत्र आएगी और जब ही उसमें पानी गिरा तो पिएगा नहीं, तो इसी तरह से प्राण छटक करता हो क्या करते। ऊपर से चाहे पानी आए तो पी लेगा, आज वज्र पड़ता है तो बस उसमें मर जाएगा, दूसरा पानी मर जाएगा। हाँ वज्र पड़ेगा तो क्या होगा, आकाश से जो बिजली गिरती है ना तो उसमें मर जाएगा, कोई चिंता नहीं, मर जाऊंगा किंतु पानी पीऊंगा कोई स्वाद नहीं। वैसे हम लोग भी छत्र नाशपाती नक्षत्र का ही पानी पिए, ब्रश से जो बूंद आती है गोपियों की धारा में
रूपानुगा नक्षत्र।